आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खाते में और साइबर धोखाधही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखादेही से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधेही के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए E0 FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफ़ुज़ात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप نافذ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور وزیراعظم لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنی کر دیا گیا تھا. ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے. اس موقع پر سمویدھان ہتیہ دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سمویدھان ہتیہ دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی. ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت اس پروگرام کی صدارت کریں گے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر.
اتراکھنڈ میں لپولیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. پتھورہ گڑھ ضلع میں تھارچولا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تکلا کوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
تجارتی افسر اور دھارچولہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے لیپو لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نبی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے.
گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھیں وہ ابھی سچارو ہیں. بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا. اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی آرمی ویاپاری اور پرشاسن کی. اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نابی ڈانگ کے سمیپ بھی ایک پڑاؤ چینت کیا گیا ہے.
بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا، لیکن 2020 میں COVID-19 وبا کے مدنظر اسے معطل کر دیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہب اینڈ سپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے. وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزرائے توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک رسائی اور مشاورت، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں. برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس 2 روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری، اختراع، تعاون اور پائیداری کا قیام ہے. دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی. نیتی آیوگ، دی انڈیا اے آئی مشن، سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے. बोस्टन में अमरीकी जिला अदालत की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा अबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं, और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बामी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक्वा मुत्तहदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। छह साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।